તારીખ 13/1/1994 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 689 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું દેવલાલીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 100 મૂળ કેસેટમાં હમિંગનો અવાજ આવે છે.
પ્રાસંગિક પત્ર સુંદરદાસ કરતે યુવાન બહુત અલ્પ બીમારી મેં અવસાન હુઆ હૈ ઉસ પર વૈરાગ્ય મેં લિખા હુઆ પત્ર હૈ. સુબહ થોડા ચલ ગયા હૈ જી. લિખતે હૈ એસે પ્રસંગ મેં કોઈ શરણભૂત નહીં હોતા, કોઈ મદદ નહીં કર સકતા, और जो भी संयोग है सभी अनित्य है और संयोग का कोई मूल्य नहीं संसार में, तुच्छ है सभी संयोग, तुच्छ है. ऐसा देखकर अपने को प्रतिबोध होता है कि हे जीव, तेरे में कहीं भी इस संसार में किसी भी उदय में मूर्छा वर्तती हो, अपनत्व होता हो, मेरापना लगता हो, तो उसका तुझे त्याग कर देना चाहिए, छोड़ना चाहिए उसको. तो छोड़, कैसे भी उसे तो छोड़. ये मूर्छा भाव ही दुख का कारण है. अपनापन करके जो मूर्छा भाव हुआ और जो रस आया, अपनत्व का जब रस आया, ये तो मेरे हैं, कैसे अच्छे हैं, बहुत मुझे जचता है, लगता है, सबों के बीच में रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, यही यहाँ से छूटे पड़ने में तीव्र दुख का कारण बन जाएगा. संयोग का रस, संयोग का मीठापन, यही वियोग का दुख का कारण है. दूसरा कोई वियोग का दुख का कारण नहीं होता. वो बात अनुभव से मालूम पड़ती है. ये कोई कहने का न्याय नहीं है कि भाई ऐसा एक संयोग वियोग के अन्याय है, ऐसी बात नहीं है. संयोग का रस और उसका मिठास जो है, ये एक अनुभव की चीज है. उसका अनुभव को देखो और वियोग में होने वाला दुख के अनुभव को देखो, दुख का अनुभव को देखो, पता चल जाएगा कि ये दुख कहाँ से आया, क्यों आया, दुख क्यों होता है, ये पता चल जाएगा. ऐसी मूर्छा का कुछ फल नहीं सिवा दुख. ऐसी मूर्छा से, मिठास से कोई फल नहीं आता, सुख नहीं मिलता, दुख ही दुख मिलता है. संसार में कभी भी किसी को शरणत्व आदिपना प्राप्त नहीं हुआ है. संसार में किसी को कोई शरण ऐसा नहीं मिला कि जिससे वो सलामत हो गया हो. कोई सलामत
नहीं है,
नहीं है. कभी भी किसी का कुछ भी हो सकता है. संसार में कभी भी शरणत्व आदिपना प्राप्त हुआ नहीं है और अविचारपना बिना यह संसार में मोह होने योग्य नहीं है कि जो मोह अनंत जन्म मरण और प्रत्यक्ष दुख का हेतु है, दुख और क्लेश का बीज है. क्या संसार के विषय, जो संसार में जो मोह होता है, सांसारिक प्रसंगों में, सांसारिक पदार्थों में जो भी मोह होता है, ये वास्तव में मोह होने योग्य नहीं है, फिर भी होता है. वचन तो बहुत सुंदर लिखा है कि इस संसार में जो मोह होने योग्य नहीं है, फिर भी जो जीव को मोह होता है, तो जीव का अविचारपना है, दूसरा कुछ नहीं है. और गंभीर वचन है.
हाँ जी.
अविचारपणा बिना संसार में भोग होने योग्य कोई चीज ही नहीं है। इसलिए सभी चीज पर जो भोग होता है संसार के विचारपणा के कारण से होता है। विचारवान जीव को तो मोह होने योग्य कोई ऐसी चीज दिखने में ही नहीं आती। ज्ञानी को भी संसार में कोई चीज मोह का कारण भूत दिखने में नहीं आती, और जो लोग मोह करते हैं उनकी अविचारीपना को वो देखते हैं कि अभी अविचारीपना से मोह करता है, ममत्व करता है, मिठास लेता है, रस लेता है, बहुत अपनत्व कर लेता है, बेचारा दुख में मर जाएगा, बहुत दुख में आ जाएगा। तो उस वक्त उसके दुख को छुड़ाने के लिए कोई मददगार, कोई शरण, कुछ भी उसको आधार मिलेगा नहीं कि दुख से कैसे छूटे, ये परिस्थिति हो जाएगी। क्योंकि ऐसे प्रसंग में परिणाम कहीं लगते नहीं। इतना दुख में घिरा हुआ जीव दुखी हो जाता है कि उसको कोई आधार मिलता नहीं, दुख में से छूटने के लिए कोई अवलंबन मिलता नहीं, ये हालत हो जाती है। क्यों? कि उसने आँख बीच कर मोह किया है, मिठास लिया है। जब उसने मिठास लिया है तब कुछ देखा नहीं है आगे पीछे कि इसका फल क्या आएगा, इसका नतीजा क्या होगा, वो नहीं देखता। अविचारपणा के बिना इस संसार में मोह होने योग्य नहीं है। जबकि मोह होता है तो अविचारपणा अवश्य अवश्य वहाँ है ही, ये बात हो गई। अब जो प्रयोग करने वाला आत्मार्थी जीव होता है, ऐसा सत्पुरुष का वचन सुनकर पढ़कर उसको ऐसा ही लगता है कि अब तो मेरे जीवन में परिणमन में जहाँ जहाँ मुझे मोह होता है, अच्छापन लगता है, मिठास आती है, जिस जिस संयोग में, ये मेरा अविचारीपना के सिवा कुछ नहीं है। सतर्क हो जाता है, जागृत हो जाता है, तो उसको उतना रस आएगा।
चाहे साधर्मी के प्रति हो
जी,
चाहे साधर्मी के प्रति हो,
साधर्मी के प्रति अपनत्व करने का क्या कारण है? यहाँ तो जो मोह की बात लिया है वो तो अपनत्व का कारण लिया है। साधर्मी के प्रति जो प्रशस्त शुभराग रहता है वो तो उतना ही रहता है कि एक मार्ग में चलने वाले हैं, इसलिए अपनत्व के कारण नहीं, तो अलग अलग बात है। ये जो सांसारिक प्रसंग में कोई भी प्रसंग और कोई भी वस्तु का मोह, अच्छापन, मिठास, अपनत्व जो भी होता है, ये केवल अशुभ भाव है। क्या
अशुभ भाव?
जबकि साधर्म के प्रति जो प्रीति होती है वो तो शुभ भाव है, कोई अशुभ भाव नहीं है। वो तो मार्ग का अनुमोदन है। क्या है? जिस मार्ग में वो आगे बढ़ रहा है इसका अनुमोदन है, और आगे बढ़े, अच्छी बात है, हम भी आगे बढ़े, वो भी आगे बढ़े, ऐसी बात है। इसमें अशुभ भाव नहीं होना, होता ही नहीं। मार्ग में चलने वाले के प्रति प्रीति भक्ति, वो मार्ग भक्ति है, ठीक है। जो मोह अनंत जन्म मरण का और प्रत्यक्ष दुख का कारण है, और ऐसा जो सांसारिक मोह है, ये प्रत्यक्ष दुख का कारण है और इससे ही जन्म मरण होता है, और दुख और क्लेश का बीज है, यहाँ से सभी प्रकार का दुख उत्पन्न हो जाता है। ये जीव, उसको तुम शांत करो, उसको तुम क्षय करो, अपने आप को प्रतिबोध करता है कि ये जीव, ऐसे परिणामों को क्षय कर दो, ऐसे परिणामों को शांत करो। ये जीव, इसके बिना दूसरा कोई हितकारी उपाय नहीं है, आत्महित का यही उपाय है। ये अहित को छोड़ना पड़ेगा, अहित को भी रखें और हित को भी करें, दो बात बनने वाली नहीं है। इसके बिना कोई हितकारी उपाय नहीं वगैरह वगैरह। भावित आत्मता से वैराग्य को शुद्ध और निश्चल करते हैं। जो भी आत्मार्थी हैं, मुमुक्षु है, सुपात्र है, वो तो भावित आत्मता से वैराग्य को शुद्ध और निश्चल, शुद्ध वैराग्य को करते हैं, वैराग्य को दृढ़ करते हैं और शुद्ध करते हैं। कैसे? भावित आत्मता से, आत्मा को भाते भाते करते हैं। आत्मभावना की प्रधानता में ये परिणाम उनके ऐसे होते हैं वैराग्य के। तो उसमें जैसे ज्ञानी के परिणाम में मुख्य दो पहलू होता है, एक आत्मज्ञान, दूसरा वैराग्य। वैराग्य मैंने संयोग के प्रति रागादि में निरसता, और ज्ञान मैंने स्वरूप का ज्ञान, अस्ति नास्ति। अस्ति में स्वरूप ज्ञान है, नास्ति में वैराग्य है। ऐसा ही मुमुक्षु जो ज्ञानी होने वाला है उनकी वैसी लाइन है। आत्मा की भावना, स्वरूप प्राप्ति की भावना में वो वैराग्य को प्राप्त होता है, और ऐसे प्रसंग में विशेष कर से वैराग्य को प्राप्त होता है, विशेष रूप से वैराग्य आता है। यदि कोई जीव यथार्थ विचार से देखे तो उसको यही प्रकार भाषित होगा, यही प्रकार भाषित होता है। यथार्थ विचारने में तो यही बात है कि ये व्यामोह ही दुख का कारण है, दूसरा कोई दुख का और जन्म मरण का कारण है ही नहीं। इस जीव को देह संबंध होने से, उस जीव को देह संबंध होने पर अगर मृत्यु न होता तो इस संसार में, संसार के सिवा, इस संसार सिवा उसकी वृत्ति अन्यत्र दूसरी बाजू होने का अभिप्राय भी होता नहीं। क्या कहा बात, तो मृत्यु प्रसंग का चिट्ठी लिखा है ना। तो अगर संसार में मृत्यु नहीं होता तो संसार में जीव इतना रुचिवंत है, इतना रस से डूबता है कि उसको कोई दूसरी बात, दूसरा कोई कर्तव्य हो सकता है, उसका विकल्प भी शायद नहीं आया, नहीं आता, विचार भी नहीं होता। क्या कहा, अच्छा है कि ये मृत्यु का प्रसंग है संसार में।
बहुत अच्छी बात,
ऐसा कहते हैं। अच्छा है कि ये मृत्यु का प्रसंग संसार में है, कि जीव को कोई धक्का तो लगे कि मुझे कुछ करना चाहिए, कुछ कर्तव्य रह जाता है, कर्तव्य छूट जाएगा, मृत्यु आ जाएगी, मनुष्य भव चला जाएगा, पूरा हो जाएगा। फिर से इस जीव को देह संबंध हो करके फिर बाद में मृत्यु न आता हो तो इस संसार के सिवा दूसरी वृत्ति में जुड़ाने का उसका अभिप्राय या विचार ही नहीं आता, शायद नहीं आता जीव को। इतना वो दौड़ता, दौड़ लगाता है संसार में, संसार के कार्य के पीछे, संसार में जो भी अनुकूलता के लिए, अरे कभी तो अनुकूलता प्रतिकूलता भी नहीं देखता है, धूम नशाए चढ़ता है, ये भी नहीं देखता है कब मुझे जरूरत है कि नहीं है, अब मेरे कोई जरूरत नहीं, वो भी नहीं देखता है। बिना जरूरत भी जैसे कोई नशा में चलता है, ऐसा नशा में चलता है। ज्ञानी तो कहते हैं कि शराब पीने वाले का नशा कुछ घंटे में उतरता है, लेकिन जिनको सत्ता का नशा और पैसा का नशा चलता है, खूब सत्ता प्राप्त करो, इससे ज़्यादा सत्ता प्राप्त करो, इससे ज्यादा पैसा नहीं, जो कितना आ गया कोई देखना नहीं है, जरूरत है कि नहीं है वो देखना नहीं है। ये नशा जीवन भर उतरता नहीं है, कभी मृत्यु का प्रसंग ऐसा बन जाता है तब धक्का लगता है, अरे ऐसा भी होता है, ये होगा, अपने को कुछ आत्मकल्याण का विचार करना चाहिए। मुख्य करके मृत्यु के भय से परमार्थ रूप दूसरे स्थान के प्रति वृत्ति की प्रेरणा होती है, और यह भी किसी विरल जीव को ही ऐसे प्रेरणा होती है, वरना तो बहुभाग तो संसार वैराग्य ही, संसार का स्मशान वैराग्य ही होता है। किसी घटना को देखी, अरे रे ऐसा हो गया, थोड़ी देर में तो सब खत्म, फिर वो का वो प्रेरणा चालू हो जाता है। ये भी बहुत विरल जीव को ऐसा होता है। मृत्यु के भय के भय से परमार्थ रूप दूसरे स्थान पर वृत्ति की प्रेरणा होती है मुख्य रूप से, वो भी कोई विरल जीव को ही ऐसा प्रेरणा हुई है। बहुत जीवों को तो बाह्य निमित्त से मृत्यु भय पर से बाह्य क्षणिक वैराग्य प्राप्त हो करके यह वैराग्य कोई विशेष कार्यकारी हुए बिना ही नष्ट हो जाता है। थोड़ा वैराग्य, स्मशान वैराग्य, ऊपर ऊपर का वैराग्य होता है, कोई कार्यकारी विशेष जीवन में हुए बिना वैराग्य का भी नाश हो जाता है। बहुत कर तो ऐसा ही होता है। मात्र कोई विचारमान, कोई विचारशील जीव होता है, अथवा सुलभ बोधे होता है, जिसको बोध के असर होने का सुलभता है, यानी तुरंत असर होवे, ऐसी कोई योग्यता प्राप्त जीव होता है, ऐसा सुलभ बोधे जीव को, या हलुकर्मी, हलुकर्मी मैंने जिसको भारी कर्म नहीं बांधा है, ज्यादा कर्म नहीं बांधा है, ज्यादा ज्यादा मैंने बहुत अनिष्ट कर्म नहीं बांधा है, हल्के हल्के कर्म बांधे हैं, ऐसे जीव को हिंदी में हलुकर्मी आवश्यक है, हिंदी शब्द में हलुकर्मी, गुजराती में पेटंट शब्द से हलुकर्मी जीव से आए, आ जीव कोई हलुकर्मी लागे छे, जेने तरत बोधनी असर थाय तो हलुकर्मी एवं जीव नु विशेषण थी जाए छे हलुकर्मी। हलु मैंने हल्का, हल्का कर्म जिसने बांधा हो ऐसे जीव को उस भय पर से अविनाशी निश्रेयस पद प्रति उसकी वृत्ति हो जाती है, कि कोई अविनाशी कल्याण हो जाए, निश्रेयस मैंने पूरा कल्याण हो जाए, जिसका कभी नाश न हो ऐसा कल्याण हो जाए, अविनाशी कल्याण हो जाए, ऐसे कोई पद की प्राप्ति के लिए, यानी मोक्ष पद की प्राप्ति के लिए इसकी वृत्ति प्रेरित हो जाती है, ऐसा वैराग्य प्रसंग में। मृत्यु भय होने पर भी यह मृत्यु संसार अवस्था, यह मृत्यु वृद्धावस्था में नियमित प्राप्त होता है, तो भी जितने पूर्व विचारवान हुए हैं उतने विचारवान नहीं होते। क्या क्या कहते हैं कि मृत्यु का प्रसंग तो है ही संसार में, अनिवार्य प्रसंग है, फिर भी इसका कोई निश्चित काल नहीं है, कोई तो मनुष्यायु इतना छोटा लेके आता है कि अपर्याप्त काल में आयुष पूरा हो जाता है, अंतर्मुहूर्त में माता के गर्भ में आता है, उसकी देह की पर्याप्त अवस्था इंद्रियों की बने इसके पहले उसका आयुष पूरा होता है, इतना छोटा मनुष्यायु भी बांधता है, कोई कुछ दिन में महीनाओं में माता के गर्भ में मरता है, कोई जन्मते वक्त मरता है, कोई जन्मने के बाद कुछ दिनों में मर जाता है, कुछ कोई कोई महीना में मर जाता है, कोई बाल्यावस्था में मरता है, कोई युवावस्था में मरता है, कोई वृद्धावस्था में मृत्यु आ रहा है, ऐसा कोई नियम नहीं है, निश्चय नहीं है, और ये भी एक वैराग्य होने का विशिष्ट कारण है। किसको? विचारवान जीव को। अगर मृत्यु निश्चित होती तो भी इतना जल्दी वैराग्य नहीं आता, ऐसा कहते हैं। ये भी अच्छा है कि अनिश्चित रूप से मृत्यु आती है, वैराग्य आने के लिए वो अच्छा है, ऐसा कहते हैं।
कभी नींद में भी मृत्यु हो जाता है तो उसको हल्का करने बोलते हैं, कभी नींद में भी मृत्यु आ जाता है,
मृत्यु किस प्रकार से होता है उस पर कोई पात्रता या हलुकर्मीपना का कोई साधन आधार नहीं है। वो तो ऐसे ही दुर्भिक्ष त्रिकाल भाव में प्राण छूटने वाले थे। जैसे कोई हार्ट पेशेंट होते हैं तो उसको इमोशनल स्ट्रेस नहीं होना है, स्ट्रेस मैंने परिश्रम, इमोशनल पर परिश्रम उसको नहीं होना है। अब क्या है कि वो सावधानी से ऐसा जीवन में रहता है कि उनको कहीं भी आवेग आ जाए और हार्ट को धक्का लग जाए ऐसा प्रसंग में वो नहीं रहना का पसंद कर देता है। तो बाहर में जागृत अवस्था में तो वो ऐसा बना सकता है अपनी व्यवस्था कि कहीं भी अपने को गुस्सा नहीं आए, किसी के लड़ाई नहीं हो, किसी के वो नहीं हो। लेकिन स्वप्न में क्या करें, तो बेकाबू आता है स्वप्न, ऐसा आता है तो उसका इमोशनल फीलिंग्स जो है बहुत बढ़ जाता है और ख़त्म हो जाता है। उसको हलुकर्मी कैसे कहेंगे? उसको जागृत अवस्था में परिणाम नहीं करे, इससे खराब परिणाम तो स्वप्न अवस्था में भी जीव कर सकता है और मर जाता है। तो इस तरह से कोई बाह्य कारण से तो उसका नाप नहीं निकलता है, बाह्य स्थिति से कोई नाप नहीं निकलता है। मृत्यु भय हो तो भी, मृत्यु भय होता है तो भी यह मृत्यु वृद्धावस्था में नियमित रूप से प्राप्त होता हो तो भी जितना विचारवान अभी तक हुए हैं उतने विचारवान नहीं हुए। अनिश्चित मृत्यु की अनिश्चितता देखकर भी कहीं जीवों को, विचारवान जीवों को वैराग्य की प्राप्ति हो गई है, तो ये भी एक अच्छा निमित्त है। देखो ज्ञानी की विचारधारा और संसार के लोगों की विचारधारा में उल्टा सुल्टा फर्क है। लोग ऐसे समझते हैं कि मृत्यु तो अच्छा प्रसंग नहीं है, इसकी बातें भी नहीं करनी चाहिए, ऐसा अशुभ प्रकार है कि उसकी बात बोलना भी नहीं चाहिए, सुनना भी नहीं चाहिए, भय होता है ना। ज्ञानी कहता कि ये भय है तुझे संसार से, तेरा परिणाम उनको मुड़ने के लिए बढ़िया से बढ़िया निमित्त है। अगर ये नहीं होता तो संसार में कभी आत्मकल्याण का विचार भी नहीं करता। और वो भी वृद्धावस्था में आता तो फिर तो पूरा कर्म मान लेता पूरी जिंदगी, और वृद्धावस्था में फिर मरने का है तो उस वक्त देखा जाएगा, उस वक्त कुछ कर लेंगे, अभी तो संसार का पूरा काम कर लो, ये हो जाता। तो इसलिए कोई ऐसा भरोसा नहीं है, इसलिए विचारवान जीव ऐसे भरोसे में रहते नहीं है। विचारवान जीवों की संख्या कम हो जाती है अगर ऐसा होता तो, लेकिन ऐसा है नहीं। जितने विचारवान हुए हैं उतने नहीं होते, अर्थात वृद्धावस्था तक तो मृत्यु का भय नहीं है ऐसा देख करके वो प्रमाद में वर्तते हैं। प्रमाद मैंने आत्मकार्य में प्रमाद कर लेते हैं कि अभी तो मृत्यु आने वाला है ही नहीं, इसका समय भी नहीं है, वो तो वृद्धावस्था में ही आता है, तो अभी तो दूसरे काम में लगे रहो, बहुत काम है हम लोगों को, उतना काम है कि फुर्सत बिल्कुल नहीं है। ये कहते हैं ना कई लोग, आप लोग ये करते हो लेकिन हमको समय नहीं है, उतना काम का बोझा रहता है। हमारे ऑफिस के बाहर मिलने वाले की लाइन लग जाती है, सुबह से अपॉइंटमेंट देना पड़ता है, शाम तक भी ख़त्म नहीं, दूसरे को दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, फिर पंद्रहवें दिन, ऐसा हमको चलता है, कहीं भी फुर्सत नहीं है,
मरवानी भी फुर्सत नहीं है।
हाँ पीछे हम बोले से भाई हमारे तो मरवानी फुर्सत नहीं थे, बात में कोई दम नहीं है, उनको रस है ज्यादा। हमारे चर्चा चली थी किसी विद्वान के साथ, हमको कोई फुर्सत नहीं मिलती है। बोला कि ऐसा अच्छा काम अपने हाथ में लो, थोड़ा कोई अच्छा काम सुझाव हमने दिया। उनको तो बिल्कुल फुर्सत नहीं है भाई, इतनी प्रवृत्ति में हम लोग हैं, ये करना वो करना, कई प्रकार की प्रवृत्ति में लगे हुए थे। उन्होंने बोला आपको फुर्सत तो है, किधर है बता दो मैं। जहाँ आपको रस है वहीं आपकी फुर्सत है, आपको इस काम में रस नहीं है तो फुर्सत नहीं है। सीधी सादी बात है, जहाँ जिसको रस है वहाँ उसका टाइम जाता है। अर्थात वृद्धावस्था तक मृत्यु का भय नहीं है ऐसा देखकर प्रमाद में वर्तता, मृत्यु का अवश्य आने का देखकर तथा इसका अनियमित पणे आने का देखकर दोनों बात इस प्रसंग प्राप्त हुए। इस प्रसंग प्राप्त होने से स्वजन आदि सबों से अरक्षित पड़ा देख करके कि मुझे कोई बचा सकेगा
नहीं,
तो वर्णन करते थे। डॉक्टर बोल देता है बस ये केस अब खत्म है, जिसको बुलाना हो उसको बुला लो, तो सबको बुला लेते हैं, जिसके जो भी इसके संबंधी होते हैं उसको बुला लेते हैं, सब आ भी जाते हैं। वो पड़ा पड़ा देखता रहता है कि ये सब आ गए लेकिन कोई मुझे तो मदद करने वाले नहीं है, क्या करेगा, देख देख कर रोएगा, इसके परिणाम और बिगड़ेंगे। ऐसे वक्त सगे संबंधी को बुलाना कि नहीं बुलाना है। बुलाने की कोई जरूरत
नहीं है,
किसी को नहीं बुलाना, साधर्मी को बुलाना, पुरुष को, ज्ञानी हो तो उसको बुलाना, जो इनके परिणाम को ठीक करे, इसके परिणाम की दवाई करे। ये तो सब आएंगे, इनके परिणाम बिगड़ जाएंगे सब, बहुत आर्थ ध्यान हो जाएगा ये दशा होगी। ऐसा प्रसंग प्राप्त होने से स्वजन आदि सबों से अरक्षितपना देख करके परमार्थ विचार विचारने में अप्रमत्तपना ही हितकारी लगा है। ऐसी परिस्थिति देख करके परमार्थ आत्मकल्याण का विचार करने में शीघ्रता, आत्मकल्याण करने में शीघ्रता, उसको अप्रमत्तपना कहते हैं। शीघ्रता से मुझे मेरा कल्याण कर लेगा, मैं सर्वथा सर्वदा सभी से भिन्न हूँ, मेरे किसी के साथ कोई संबंध
नहीं,
ऐसा वो विचार करेगा। कोई संबंध नहीं है क्या, पूरा जगत मेरे लिए शून्य है क्या, पूरा जगत मेरे लिए शून्य है, शून्य से क्या संबंध हो सकता है, शून्य से कोई संबंध होता है क्या। बस फिर उसको कोई प्रतिबंध नहीं है, फिर कोई प्रतिबंध रहने वाला नहीं, क्योंकि विकल्प एक पक्षी है, विकल्प रूपी एक पक्षी है, वो उड़ता है कहीं न कहीं बैठ जाता है, कभी इधर उड़कर बैठता है, कभी इधर उड़ के बैठता है, कभी इधर उड़ के बैठता है,
बराबर।
अब जब शून्य है, सारा जगत शून्य है, वो विकल्प बैठेगा कहाँ, उड़ करके जाएगा कहाँ, तो कोई जाने की जगह नहीं है, तो ये परिणाम अपने आप में समाविष्ट हो जाएगा। लेकिन जगत शून्य मत भाषे तब तो जीना तो भी मुंबई में और मरना तो भी मुंबई में, यह हो जाता है वहां तो परिणाम बिगड़ेगा।
क्या बम्बई की दाल कड़ी अलग है,
बम्बई
में दाल कड़ी अलग है,
तो हमारे गुजरात में कहते थे, हमारे अंकल है, तो बहुत छोटी उम्र का था, 15 साल की उम्र का था, उसकी युवान उम्र में थे, तो चाइना का गौर हुआ था उसको, उसकी बात थी। और ये बम्बई में कोई चाइना कंपनी में अच्छी पोस्ट पर थे, हॉट एरिया में कोई ऑफिस में अच्छी पोस्ट पर थे, ऐसे तारे बाई करके वहाँ, तो ऑफिस में तो इस दिन से जरा सुटेट बुटेट होकर के जाना पड़ता है। चाइना ओवर में कंपनी का ऑफिस बंद हो गया और उसकी नौकरी ऐसे अचानक टूट गई, तो दूसरी नौकरी कोई पता नहीं लगता था। हमारे जो पिताजी वगैरह जो अच्छे बड़े थे, उन्होंने बोला तो भाई तुम इधर आ जाओ, छोटा भाई है, अपने को इधर ही छोटे मोटे काम कर लेंगे। नहीं भाई साहब, हम तो जिंदा रहना मुंबई में, अभी भी मुंबई में ही है, अभी जिंदे हैं, अभी 70-75 साल के हैं, जिंदा भी मुंबई में रहना है, अगर मरना है तो भी मुंबई में। हमको तो मुंबई नहीं छोड़ना है, फुटपाथ पर रहना हो तो भी मुंबई में, और बड़े आलिशान फ्लैट में रहना हो तो मुंबई में, मुंबई में रहना, मुंबई नहीं। क्या होता है, उम्र हो जाती है, जीवन के संध्या काल में आ जाते हैं और निवृत्त हो जाते हैं, कारोबार से व्यवसाय से निवृत्त हो जाते हैं, फिर मुंबई नहीं छोड़ते। हमको ताजुब होता है, हमको तो आठ दिन रहते तो गला घोंटने लगता है, हमारा मतलब नहीं है मुंबई से, लेकिन यहाँ का जो वातावरण, धमाल, ये ट्रैफिक, वो सब देखते ही आठ दिन में तो लगता है कि यहाँ से निकल जाएगा। तो कुछ भी हो, ये तो रहने वाला खाने वाला जाने, हमारा तो आठ दिन में दम घोंटने लगता है। यहाँ कुछ वातावरण ही अलग है, देखो ये निवृत्त स्थल है, कितना शांत स्वाध्याय करने में, और कहाँ मुंबई के धमाल, देखो
बराबर है।
हाँ, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। लिखते हैं कि अगर आजीविका का कोई विशेष प्रसंग नहीं हो तो जीवन निर्वाह करने का कोई दूसरा प्रसंग ही नहीं हो तो अलग बात है, वरना विशेष प्रवृत्ति वाला क्षेत्र में जाना ही नहीं, रहना ही नहीं, वहाँ निवास करना ही नहीं, जहाँ निवृत्ति क्षेत्र है वहाँ निवास कर लेना, छोटा मोटा काम वहां कर लेना, इधर उधर नहीं जा रहा। क्या कहते हैं कि ऐसी सब परिस्थिति, मृत्यु और मृत्यु की अनिश्चित काल की व्यवस्था देखकर अप्रमत्त रूप से परमार्थ मार्ग में शीघ्रता से काम करने का हितकारी लगा, कौन किसको, विचारवान जीव को हितकारी लगा, और सर्वसंग अहितकारीपन, सर्वसंग का अहितकारीपना लगा, कि जितने भी हमारे संयोग है वो अहित के कारण है, अहित के निमित्त है, कोई हित के निमित्त है ही नहीं, क्योंकि मोह के निमित्त है, जो भी संग है वो विचारवान पुरुषों का यह निश्चय, विचारवान जीवों का, विचारवान पुरुषों का यह निश्चय निसंदेह सत्य है, तीनों काल सत्य है। कितना अनुमोदन देते हैं, ऐसा कोई विवेक करता है अपना अपना आत्म कल्याण में, अप्रमत्तपना करने का कोई विवेक करता है, तो ऐसा विचारवान जीव का निश्चय सत्य है, त्रिकाल सत्य है। मूर्छा भाव का खेद छोड़ करके ऐसे प्रसंग में मूर्छा भाव से उत्पन्न दुख का भाव को छोड़ करके असंग भाव प्रत्यय खेद विचारमान को कर्तव्य है। दोनों खेद है, एक मूर्छा भाव से उत्पन्न खेद है, एक असंग भाव प्राप्त करने के लिए खेद होता है, मेरी मूर्छा से ये हुआ है दुख, अब तो ऐसा दुख करना दोबारा मेरे से मैं ऐसा रस नहीं लूंगा किसी के प्रति कि दोबारा ऐसा प्रसंग में ऐसी घटना में मुझे इस प्रकार का दुख होवे। उसका असंग भाव प्रति खेद विचारवान को कर्तव्य है, मैंने वैराग्य में आना यही विचारवान को कर्तव्य है। प्रसंग हुआ है ना, सही वैराग्य में आओ, मूर्छा का खेद को छोड़ करके सही वैराग्य में आ जाओ। जो यह संसार में, यदि इस संसार में ऐसा प्रसंग का संभव, ऐसा प्रसंग ही संभव नहीं होता, स्वयं को और दूसरे को ऐसे प्रसंग की अप्राप्ति दिखने में आती, अशरणादिपणा न होता, और अशरणादिपणा न होता तो पंच विषय के सुख साधन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी, किसी भी प्रकार की जिसको कमी नहीं थी, ऐसे ऋषभादि परम पुरुष और भरत आदि चक्रवर्ती ही किस कारण से उसका त्याग करते हैं। उनको तो कोई कमी ना नहीं थी, उनको पांच इंद्रियों के विषय पूरे पूरे उपलब्ध थे, उसको कमाने के लिए बाजार में नहीं जाना पड़ता था, परिश्रम करना नहीं पड़ता था, इतना पुण्य लेके आए थे कि इनके खजाने में देवी संपत्ति आ जाती थी, देव लेकर के आते थे। इन लोगों ने संसार का त्याग क्यों किया? उन लोगों ने अपने विचार से किया। ऐसे कोई दरिद्री छोड़ देता है, दीक्षा लेता है, वो अलग बात है, लेकिन कोई संपन्न लेता है, इसका मतलब क्या होता है कि उसमें ऐसा दुखदायक है, संसार केवल दुखदायक है, इसका अनुभव उन लोगों ने कर लिया है, और उसका अनुभव ज्ञान से प्रेरित होकर के उन्होंने संसार का त्याग किया है। फिर से, यदि इस संसार में मृत्यु जैसे प्रसंग की संभावना न होती, स्वयं को और दूसरे को ऐसी प्रसंग की प्राप्ति नहीं देखने में आती, और इससे अशरण है, कोई शरण नहीं होता, ऐसा नहीं होता, तो फिर पंच विषय के सुख साधन में किसी भी कमी ना नहीं थी, ऐसे ऋषभादि परम पुरुष भरत आदि चक्रवर्ती उन लोगों ने किस कारण से इसका त्याग करते और एकांत असंगपना को क्यों भजते, एकांत असंगपना में क्यों चले गए, वो जंगल में असंग दशा में क्यों विहार करने लगे, ये सबों का संग क्यों छोड़ दिया? कि संग में रहने का मोह ही दुखदायक है, संग में रहने का मोह ही दुखदायक है, आत्मा असंग तत्व है और असंगपना में ही उसका सुख है। आत्मा स्वयं असंग तत्व होने से परम असंग चैतन्य स्वरूप आत्मा है, जो आत्मभावना का विषय है। तो 833 में कृपालु देव ने भावना भावी है, मैं परम असंग चैतन्य स्वरूप हूँ, मात्र केवल असंग हूँ। तो ये असंग भाव में रहना ये सुख का और शांति का कारण है, संग का भाव दुखदायक। ये आर्य माणिक चंद आदि जिसको पत्र लिखा है उनको संबोधन करते हैं, इनका जवान लड़का गुजर गया है, उनको संबोधन करते हैं। हे आर्य, आर्य मैंने अच्छे विचार वाले, विचारवान जीव है, यथार्थ विचार की कमी के कारण से आपको दुख हो रहा है, इसका कारण क्या है? यथार्थ विचार की कमी के कारण से और पुत्रादि भाव की कल्पना के कारण से, कि ये मेरा पुत्र था, ये मेरा पुत्र था, कोई जीव किसी का पुत्र हो सकता नहीं है। आगे आगे 537 में तो उपाध्याय किया, किसी जीव के में पितापना पुत्रपना का भाव करके इस जीव ने अपना अहित करने में कोई कमी रखे
नहीं है।
ये भाव कल्पना का हेतु, ये दुख का पूरा कारण है। नहीं, जन्म मरण का और संसार में परिभ्रमण का कारण है। वीर आर्य माणिक चंद आदि यथार्थ विचार की कमीपना के कारण और पुत्रादि भाव की कल्पना के कारण और ऐसी मूर्छा के कारण, मेरा पुत्र है ऐसा मेरापना की मूर्छा जो हो गई, उस मूर्छा के कारण तुमको कुछ भी विशेष रूप से दुख प्राप्त होना संभवित है तो भी यह खेद का तुम दोनों को कुछ भी हितकारी फल नहीं होने से, तो दोनों को मैंने क्या, तुम रोते हो खेद करते हो तो मरने वाले को भी लाभ नहीं और तुमको भी लाभ नहीं, दोनों में से किसी को लाभ नहीं है। तुमको विशेष खेद होना संभवित लगता है तो भी यह खेद का दोनों को कुछ भी हितकारी फल नहीं होने से, और हितकारीपना मात्र असंग विचार बिना कोई अन्य उपाय से नहीं है ऐसा विचार करके अपना आत्मा के असंगता को चिंतन करो। मेरा उनका जो संग था ये कोई प्रारब्धवशात था, वास्तव में मेरी आत्मा असंग तत्व है, किसी से भी किसी प्रकार का सभी प्रकार का कोई कोई संबंध ही नहीं है, सर्वथा भिन्न हूँ और सर्वदा भिन्न हूँ, पूरे जगत से शून्य हूँ। आंख बीत जाना, जगत को देखने की आंख बंद कर देना, ये शून्य है, कुछ है ही नहीं उसमें, ऐसा असंगपने का विचार बिना, वित्कारीपना तो मात्र असंग भाव में असंग विचार में ही, इसके बिना कोई उपाय नहीं है ऐसा विचार करके होने वाले खेद को यथाशक्ति विचार से उपशांत करना, ऐसे सही विचारों से, पारमार्थिक विचारणा से, सुविचारणा से इस होने वाले खेद को उपशांत कर देना। ऐसी विचारणा नहीं चले तो ज्ञानी पुरुष के वचनामृत के आधार से भी ऐसे विचारणा करके इस खेद को उपशांत करना। देखो क्या क्या बात करते हैं, तथा साधु पुरुष के आश्रय से मुमुक्षु हो, जो अच्छे विचारवान जी हो, इसके संग में चले जाना, इसके आश्रय में चले जाना मतलब इसके संग में चले जाना। अभी अभी मेरे परिणाम बहुत अस्वस्थ हो रहे हैं, मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ, कुछ ऐसी बात करें, कोई ऐसे भाव प्रदर्शित करें कि जैसे मेरे परिणाम उपशांत हो जाए। साधु पुरुष के आश्रय समागम आदि से और वीरती से उपशांत करना, वीरति करना, विरक्तपना, निरसपना, कहीं भी रस लेने का बंद कर दो और इस दुख को उपशांत कर दो, यही कर्तव्य है इस दुख में, तो आपको यही कर्तव्य है, यही आपका हित का कारण है। खेद करना, दुखी होना, ये कोई हित का उपाय
नहीं, नहीं।
मैंने बहुत पहलू से, अनेक पहलू से इस पत्र को विस्तार से लिखा है, क्योंकि जो जिसका देहावसान हुआ था ये भी एक मुमुक्षु थे, बहुत अल्प बीमारी में, युवा अवस्था में अचानक ही अकस्मात ही देह को छोड़ करके वो चला गया, तो इनके परिवार को धक्का लगना स्वाभाविक है, उनका चारों पड़खों से इतने वचन से लिखा है कि वो आत्मकल्याण के रास्ते पे आ जाए, अकल्याण का रास्ता को छोड़ करके स्वयं के कल्याण के रास्ते पे आ जाए, ऐसी एक भावना से चारों पहलू से बहुत सुंदर ये पत्र में सब भाव आए हैं। मुद्दों की बात तो वो है हम लोगों के लिए, जो हम लोग परिवार के साथ रहते हैं, उनको कि कहीं भी मूर्छा रूप मर्म भाव से रस लेना नहीं है, क्या मूर्छा रूप ममत्व भाव से कहीं भी रस लेना नहीं, चाहे मेरापना, छोटापना, अपनापना जो होता है उसमें सेकंडों में कितना रस जीव लेता है वो रस नहीं है, वो वास्तव में आत्मिक सुख का प्रतिपक्ष भूत जहर है। कितना जहर जीव खा लेता है पी लेता है सेकंडों में उसको पता नहीं चलता है। जब ऐसा प्रसंग बनता है तब दुख का इतना जोर से लगता है, उस दुख में वो डूब जाता है। बोलते हैं लोग हमारे पर तो दुख के डूंगर टूट पड़े हैं, ऐसे बोलते हैं इसको, हम तो दुख के डूंगर के नीचे दब गए हैं, ऐसा हमारा हो गया है। क्यों? उतना रस लिया था, वो रस अविचारपने से लिया था, विचारवान जीव को सतर्क होकर के जागृत होकर के किसी भी उदय में बहुत मंद रस से प्रवर्तमान रहना है। जब जहाँ तक वो सर्वसंग परित्याग करके असंग दशा में बाहर में भी नहीं आ सकता है, इतनी साधना नहीं चलती है, वहाँ तक तो कुटुंब संघ के साथ रहना ही होगा, तो उसमें सावधान हो जाए और मंद रस से प्रवृत्ति करें तो एक दुख से बच जाएगा। और ऐसे प्रसंग में और अधिक वैराग्य होकर के आत्मकल्याण के मार्ग में अग्रसर हो जाएगा। ऐसा प्रसंग दुख का कारण नहीं, आत्मकल्याण का निमित्त बन जाएगा। जो संसार में बहुत दुख का प्रसंग है, यही विचारवान जीव को, मुमुक्षु जीव को आत्मकल्याण का निमित्त बन सकता है। देखिए प्रसंग तो प्रसंग है, अब उसको कैसे कन्वर्ट करना ये हमारी समझदारी का विषय है। समझदारी नहीं है तो जन्म मरण का कारण दुख, दुख वो दुख भी जन्म मरण का कारण दुख हो जाएगा। ऐसे बहुत सुंदर आश्वासन दिया। कोई घंटे में मर जाते और कोई
बहुत साल तक
रहते हैं
जीवन में,
आयु इतना लेकर कहें पूर्व भाव में आयु, आयु जो है वो अगले भाव में उसका बंध पड़ता है, उसका जो स्थिति है स्थिति बंध जो है वो आगे आने पहले पहले भाव में पूर्व भाव में ही वो हो जाता है निश्चित। तो जिसका जितना निश्चित हो गया उतना उसका भोगना है, इसमें कम स्थिति बांधा है तो कम आयु भोगेगा, ज्यादा स्थिति बांधा है तो ज्यादा आयु भोगेगा। इच्छापुरा का सवाल नहीं है, हमारी आत्मा की आयु तो अनादि अनंत है। क्या ये जो ज्यादा कम आयु है वो हमारी आयु है ही नहीं? वास्तविक बात तो वो है कि हम जो आत्मा है हमारी आयु तो अनादि अनंत है, हम अनादि अनंत जिंदा रहने वाले हैं। लेकिन जब हमारे सभी आत्मा अनादि अनंत रहता है, किसी की मृत्यु तो होती नहीं, भाव से भावांतर होते हैं और दुखी होते हैं, क्यों? अज्ञानवश, ये मेरी मृत्यु हो गई, ये मेरे लड़के की मृत्यु हो गई, ये फलाने की मृत्यु हो गई, मेरे हैं इसकी मृत्यु हो गई, इसका ही दुख है, किसी की मृत्यु तो होती नहीं। यह जीव इस क्षेत्र को छोड़ करके कोई अन्य स्थान को ग्रहण करता है, इस स्थान को छोड़ करके अन्य स्थान को ग्रहण करता है, किसी की मृत्यु तो होती नहीं। लेकिन हमारी ये कल्पना बनती है तो कल्पना के कारण रस्सी में सांप देखते हैं तो भय लगता है, अंधेरे में रस्सी पड़ी है लगता है कि सांप पड़ा है तो दुखी हो जाएंगे, भयान्वित हो जाएंगे कि अरे घर में सांप कहाँ से आ गया, है तो रस्सी, कल्पना होगी, ऐसे अपनेपन की कल्पना होती है तो दुख होता है। आयु तो आयु कोई जीव की चीज तो है नहीं, वो तो अजीव पदार्थ की स्थिति है। आयु कर्म है, वो तो पुद्गल के परमाणु है, द्रव्य कर्म है, वो तो जीव का स्वरूप ही नहीं है। फिर इसमें अच्छा बुरा क्या, कोई अच्छा बुरा नहीं, ऐसा। નિયમ એવો છે કે ઉદયમાં આવેલા કર્મની સ્થિતિમાં ફેરફાર ન થાય. એટલે કોઈ જીવ જ્યારે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ આવે ત્યારે એનું આયુષ શરૂ થઈ જાય, પછી એમાં કાંઈ ફેરફાર ન થાય. ઇન્દ્ર નરેન્દ્ર જીનેન્દ્ર કોઈ ફેરફાર ન કરે. અકસ્માત તો આપણા દ્રષ્ટિકોણથી છે, સર્વજ્ઞના દ્રષ્ટિકોણથી અકસ્માત ક્યાં છે? એમને તો એક સમયમાં ત્રણ કાળ ત્રણ લોક જોયા છે, ત્યાં કઈ અકસ્માત જેવું છે જ નહીં. જૈસે સર્વજ્ઞ કો કોઈ આશ્ચર્ય હોતા હે ક્યા? સર્વજ્ઞ કો આશ્ચર્ય હોગા કહીં? ક્યોંકિ ઉસકો ઉસને તો પહેલે સમય મેં પૂરા તીન કાળ તીન લોકો દેખ લિયા હૈ, કોઈ આશ્ચર્ય આશ્ચર્યકારક ઘટના હૈ નહીં. એસે સર્વજ્ઞ સ્વભાવ સ્વીકાર કરને વાલે શ્રુત જ્ઞાની કો ભી આશ્ચર્ય નહીં હોતા, ધ્રુવ કો આશ્ચર્ય નહીં હોતા, સર્વજ્ઞ કો નહીં હોતા. સર્વજ્ઞ કા સ્વરૂપ જિસને સ્વીકાર ક્યા હૈ, જિસ શ્રુત જ્ઞાન મેં સ્વીકાર ક્યા હૈ, ઉસકો ભી કોઈ આશ્ચર્ય નહીં. જો ભી ઘટના ઘટતી હૈ વો અપને સ્વકાલ મેં હી હોતી હૈ. અકસ્માત ભી સ્વકાલ હૈ, તો કોઈ અકાલ નહીં હૈ. બોલને મેં આતા હૈ કે અકાલ મૃત્યુ હુઈ, વાસ્તવ મેં વહી સ્વકાલ હૈ. ઇસકા મતલબ એસા હૈ. કલાકો સુધી કોમા મારીએ છીએ, કોઈ મહિનાઓ સુધી કોમા મારીએ છીએ, હા વર્ષો સુધી રહીએ છીએ. સુખસાન ના હોય, કોઈ સુખસાન નહીં. લિક્વિડ દેતે હૈ તો કોઈ ઇસકો પતા નહીં, કોઈ સુનાતે હૈ તો કોઈ પતા નહીં, કોઈ પતા નહીં.
પાંચે ઇન્દ્રિયના વિષયો કામ નહીં કરતા, કોઈ ઇન્દ્રિય પાંચે ઇન્દ્રિય કે મન કઈ પેન કામ કરતો હશે તે રહ્યા
ઉપયોગ મૂંઢાઈ ગયો. દેહાત્મ બુદ્ધિ તીવ્ર થઈ જાય છે અને દેહમાં આત્મબુદ્ધિ, અરે રે મારું શું થશે, શું થઈ ગયું મને, ઉપયોગ ઘેરાઈ જાય છે, મૂંઢાઈ જાય છે. કોઈ વખત બેશુદ્ધ થયા છો, બેભાન થયા છો ક્યારે? નથી થયા. અચ્છા, કોઈ વખત એનેસ્થેસિયલ છે, કોઈ કામ પડ્યું છે, સુંઘાડ્યું હોય ને ઓપરેશન વખતે કામ નહીતર ખ્યાલ આવી જાય, નહીતર ખ્યાલ આવી જાય, ઉપયોગ ઘેરાઈ જાય છે. પછી પોતાને કઈ સુખસાન નથી.
આમાં પ્રસંગ ચાલે છે ત્યારે ખ્યાલ આવે છે, દુઃખ નથી રહેતો.
જોવે તો વેદના નો દુઃખ હોય છે, પણ બહુ સૂક્ષ્મ ઉપયોગ હોય એનું કામ છે. દેવ ગુરુ શાસ્ત્ર સત્પુરુષ અને સત્સંગમાં અંતરાય નાખો, આ બધા જ્ઞાન ની વિરાધના ના પ્રસંગ છે. કેમ કે સર્વજ્ઞ પ્રતિમા પ્રતિષ્ઠાને વિરોધ થાય છે, એ અત્યારે દેવ વિરાધના એવી રીતે થાય છે, કેમ કે સાક્ષાત સર્વજ્ઞ નથી, પણ અરિહંત પ્રતિમાનું સ્થાપન વિરુદ્ધ જવો એ દેવ વિરાધના છે. એવી જ રીતે ગુરુ વચન અથવા ગુરુના કહેલા સિદ્ધાંતો અથવા ગુરુના વિષયમાં કોઈ વિરુદ્ધ કલ્પના થઈ જવી, વિદ્યમાન કે અવિદ્યમાન કોઈ બી, એ ગુરુ વિરાધના છે. એવી રીતે સિદ્ધાંતનો વિરોધ કરે, વિરુદ્ધ સિદ્ધાંત, સાચા સિદ્ધાંતનો વિરોધ કરે, વિરુદ્ધ સિદ્ધાંત સ્થાપન કરે, એ પણ જ્ઞાનની વિરાધના છે. સત્પુરુષનો અવર્ણવાદ કરે, જ્ઞાનીનો વિરોધ કરે, જ્ઞાનીની અભક્તિ કરે, અવિનય કરે, એ પણ જ્ઞાનની વિરાધના છે. કોઈ સત્સંગ માટે એકત્ર થતા હોય એમાં બાધા ના કરે, એને ન થવા દેવું, એવા પરિણામ કરવું કરાવવું અનુભવું, મન વચન કાયા નવ કોટી જાય. ક્યારે પણ કઈ રીતે થાય એ બધી જ્ઞાન ની વિરાજમાં છે.
નિગુતના જ્ઞાન જેટલું પણ નથી કે નહીં પ્રોબ્લેમ થાય, જ્ઞાન વિરાઈ ગયું છે
આપણે
એમ દેખીએ તો અત્યારે વર્તમાનમાં તો
શું છે કે જે ભોગ સંઘમાં એ ક્રિયાકાંડમાં પીડ્યા છે તો એથી કાંઈ કોઈ જ્ઞાનની આરાધના તો નથી, એમાં કોઈ આરાધના તો છે જ નહીં, સાધના તો છે જ નહીં. એ તો એક ગ્રહિત મિથ્યાત્મકમાં લાગી ગયેલા હોય છે. જે સાધન નથી એને સાધન માને છે, માર્ગ નથી એને માર્ગ માને છે, ધર્મ નથી એને ધર્મ માને છે, ધર્મનું કારણ નથી એને ધર્મનું કારણ માને છે. તો એ તો વિરાધનામાં છે, એનું ફળ શું આવે? એવા જીવોને કઈ બે બે કલાક પૂજા કરે એટલે એને મમત્વ નથી હોતું, દેહાધ્યાસ નથી હોતો, એને કુટુંબમાં મમત્વ નથી હોતું, સમાજનું મમત્વ નથી હોતું, પૂરું હોય છે. પ્રકૃતિમાં કઈ ફેર પડે નહીં એવા માણસો જોયા છે. આ તો બે બે કલાક પૂજા કરે પણ આખી જિંદગી તપસ્યા જ કર્યા કરે, ઉપવાસ ને એકટાણા ને આયમ બિલ ને આ ને તે ને આ છ રસનો ત્યાગ ને આનો ત્યાગ ને આનો ત્યાગ ને બ્રહ્મચર્ય ને બીજું ને ત્રીજું આખી જિંદગી પ્રકૃતિમાં ઉલટો બગાડ થયો હોય. ક્રોધની પ્રકૃતિ હોય તો ઓર ક્રોધી થાય, લોભની પ્રકૃતિ ઓર લોભી થાય, માયાની પ્રકૃતિ ઓર માયાવી થઈ ગયા, એવી સ્થિતિ બને છે. કેમ કે અંધ થઈને ક્રિયાકાંડ કરતા હોય, એને સ્વભાવનું લક્ષ થતું નથી એટલે એને પોતાના પરિણામના દોષ નિર્દોષતાનું જ્ઞાન જ નથી થતું. એ તો એ ક્રિયા કર્યાનો સંતોષ જ લીએ છે, બીજું કાંઈ નથી હોતું. એ પૂતગલની ક્રિયાનો સંતોષ લે છે. એટલે મિથ્યાત્વને તીવ્ર કરતા જાય, મિથ્યાત્વને તીવ્ર કરતા જાય અને પોતાના દૂષિત પરિણામ ઉપર એનું લક્ષ્ય ન હોય કે અમારો ક્રોધ વધી ગયો, પેલા ઓછો હતો હવે વધારે થયો, એટલે એને ખબર ન પડે.
સાચું દ્રષ્ટાંત તમને થોડા વખત પહેલા વિદિશામાં જ્ઞાનચંદજી કહેતા હતા કે એક બાઈ છે, વર્ષો સુધી આ ક્રિયાકાંડ કરે અને જીવેશનું નામ બંધુ છે અને મૃત્યુ થઈને વ્યંતર થઈ છે. એ વ્યંતર થઈ પછી યુગજીને ત્યાં બોલાયા તો પોતાને તો નર્મદા કાનું કંઠી છે, પોતાને ભગવાન પાસે જવું છે, ત્યાં ભાગવું છે કે ના મારે ભગવાન પાસે જવું નથી, થાય નામ લેવા વાળી બાઈ દુખી વાત અને વ્યંતર થઈ કે મારે ત્યાં જવું નથી.
બારમાં જ્ઞાની પુરુષ નો આશ્રય મળ્યા વગર એનું ઠેકાણે પડવું બહુ મુશ્કેલ છે, પરિણામ નું ઠેકાણે પડવું બહુ મુશ્કેલ છે.
ખરેખર વિશુદ્ધ કરી નાખે